ये आकाशवाणी है। अब आप अपर्णा सिंह से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारतवर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने के लक्ष्य की दिशा में कार्य कर रहा है। बोचासनवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामीनारायण संस्था BAPS के विश्वभर के 1,00,000 स्वयंसेवकों की सेवा के सम्मान में गुजरात के अहमदाबाद में आयोजित कार्यकर स्वर्ण महोत्सव को वर्चुअल रूप से संबोधित करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही। सेवा के सिद्धांत को भारतीय संस्कृति का अंतर्निहित अंग बताते हुए प्रधानमंत्री ने स्वयं सेवकों से आग्रह किया कि वे समाज की बेहतरी के लिए संकल्प पूरे कर राष्ट्र निर्माण में योगदान दें। प्रधानमंत्री ने यूक्रेन में युद्ध के दौरान भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकालने के लिए BAPS के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि BAPS के व्यापक मानवीय कार्यों के कारण विश्व में भारत की ताकत और प्रभाव में वृद्धि हुई है। श्री मोदी ने वैश्विक स्तर पर देश की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक धरोहर का प्रसार करने के लिए BAPS के योगदान का उल्लेख किया। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि टीबी यानी तपेदिक मुक्त भारत का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। श्री नड्डा ने हरियाणा के पंचकुला में 100 दिन के टीबी उन्मूलन अभियान की शुरुआत करने के बाद कहा कि वर्ष 2025 तक देश को टीबी मुक्त बनाने में ये अभियान मील का पत्थर साबित होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि तपेदिक से अधिक प्रभावित जिलों पर विशेष ध्यान देने के साथ 100 दिन के विशेष अभियान के शुरुआत से तपेदिक के खिलाफ देश की लड़ाई और मजबूत हुई है। श्री मोदी ने कहा कि देश में रोगियों को दोगुनी सहायता, जन भागीदारी, नई दवाओं, प्रौद्योगिकी के उपयोग और बेहतर नैदानिक उपकरणों के साथ बहुआयामी तरीके से तपेदिक बीमारी से लड़ रहा है। उन्होंने सभी से मिलकर टीबी को खत्म करने में अपना योगदान करने की अपील की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल के आर्क बिशप जॉर्ज कुआकट को पोप फ्रांसिस द्वारा कार्डिनल नियुक्त किए जाने को भारत के लिए गर्व का क्षण बताया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भारत सरकार ने इस समारोह में शामिल होने के लिए केंद्रीय मंत्री जॉर्ज कुरियन के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल भेजा है। उन्होंने कहा कि समारोह से पहले भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने पोप फ्रांसिस से भी मुलाकात की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने वैश्विक संघर्षों को हल करने के लिए नवीन और भागीदारीपूर्ण कूटनीति का आह्वान किया। यूक्रेन संघर्ष का उल्लेख करते हुए विदेश मंत्री ने कहा है कि भारत के कूटनीतिक प्रयास दोनों ओर के नेताओं के साथ हैं। दोहा फोरम में उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर संवाद की आवश्यकता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 11 दिसंबर को नई दिल्ली में उत्कृष्ट कार्य करने वाली पंचायती राज संस्थाओं को सम्मानित करेंगी। वर्ष 2022-23 के लिए विभिन्न श्रेणियों के तहत कुल मिलाकर 45 पुरस्कार विजेताओं का चयन किया गया है। ये पुरस्कार पंचायत स्तरीय शासन और सामुदायिक विकास में उपलब्धियों की एक विस्तृत श्रृंखला को दर्शाते हैं। इस वर्ष प्रतियोगिता में 1,94,000 ग्राम पंचायतों ने भाग लिया। 42 पुरस्कार विजेता पंचायतों में से 42% पंचायतें महिलाओं के नेतृत्व वाली हैं। केंद्रीय ऊर्जा आवास और शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने विजयवाड़ा में एपी ऊर्जा दक्षता कार्यक्रम के शुभारंभ में भाग लिया। इस कार्यक्रम का आयोजन ऊर्जा मंत्रालय ऊर्जा दक्षता सेवा लिमिटेड और आंध्र प्रदेश सरकार ने संयुक्त रूप से किया। केंद्रीय मंत्री ने ऊर्जा दक्षता के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि दुनिया एक नए युग के चौराहे पर है। स्थिरता, ऊर्जा दक्षता और आर्थिक सशक्तिकरण अब आकांक्षाएं नहीं बल्कि प्राप्त करने योग्य वास्तविकताएं हैं। उन्होंने कहा कि शुरू किए गए 3 कार्यक्रम नागरिकों को एक उज्ज्वल, हरित और समृद्ध भविष्य की ओर ले जाएंगे। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक योल के खिलाफ कल सदन में विपक्ष का महाभियोग प्रस्ताव गिर गया। राष्ट्रपति के नेतृत्व वाली पार्टी ने मतदान के समय कार्यवाही का बहिष्कार किया। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए 300 सदस्यों वाले सदन में से 200 सदस्यों की आवश्यकता होती है। महाभियोग प्रस्ताव लाने वाली पार्टी विपक्षी पार्टियों के कुल 192 सदस्य हैं। महाभियोग प्रस्ताव बिना मत विभाजन के ही गिर गया। एडिलेड में ऑस्ट्रेलिया के साथ दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच के दूसरे दिन भारत ने अपनी दूसरी पारी में 5 विकेट पर 128 रन बना लिए थे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।